परमेश्वर में प्रभु का जीवित वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोताओ, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उपाध्याय नामक पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। श्रोताओ, हमें विश्वास है कि इस पुस्तक से आपको आत्मिक ज्ञान मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
प्रभु की हम सब आते हैं, हम सब आते हैं करने स्तुति धन्यवाद प्रभु की हम सब आते हैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे आशा है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने परिवार और मित्रों के साथ बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से उपाध्याय नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हम सब ने देखा है कि परमेश्वर एदोम से घृणा करता है, अर्थात वह उसको दंड देना चाहता है और इसका कारण यही है कि वह परमेश्वर से दूर हो गया है और वह अपने आप पर भरोसा रखने लगा है। इतना ही नहीं, वह नरबलि भी चढ़ा रहा है जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। मेरे प्रियो, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और इस पुस्तक से और भी ज्ञान की बातों को सीखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको फिर से धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से आपके पवित्र और सामर्थ्य वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम आपके वचन में से मनन चिंतन करते हैं, आपके वचन में से सीखते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि जब हम आपके वचन को रेडियो के माध्यम से सुनते हैं, एक साथ अध्ययन करते हैं, तो निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप उनके जीवनों को आशीषित करें। इस घड़ी हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो बीमार अवस्था में हैं और आपकी ओर आस लगाए बैठे हैं। मेरी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है कि आप उन्हें छुएं और उन्हें चंगाई प्रदान करें, क्योंकि प्रभु आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य हैं। आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो सदा दया करने वाले हैं। प्रभु जी, आप उनके साथ उनकी सहायता करें। हमारी प्रार्थना अन्य भाई बहनों के लिए भी है जो इस समय आपके वचन को सुनने के लिए तैयार हैं और जो पहली बार आपके वचन को सुन रहे हैं। आप उन सब से भी बातचीत करें, क्योंकि प्रभु आपका वचन दोधारी तलवार से भी तीखा और तेज है जो शरीर के अंग अंग और गूदे गूदे को छेदता है। आज हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों के जीवन से आप बातचीत करें और उन सबों को आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, हम देख रहे हैं कि ओबद्या एदोम के अपराधों की सूची हमें देता है और कहता है कि उन्हें अपने ज्ञान पर, अपनी सुरक्षा पर घमंड था और वे परमेश्वर से दूर थे। वे नरबलि चढ़ाते थे, वे लड़ाके भी थे, वे इस्राएल के संकट से अत्यधिक प्रसन्न होते थे। और यही नहीं, जब बेबीलोन ने उन्हें बंदी बना लिया तब उन्होंने जाकर यरूशलेम को लूटा। यह सब इसलिए कि वे परमेश्वर को तुच्छ समझते थे और घमंड से भरे हुए थे। अतः परमेश्वर कहता है कि वह उनको ऐसा नष्ट करेगा कि उनका नाम एवं निशान मिट जाएगा। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए ओबद्याह की पुस्तक उसके एक अध्याय के 9 पद में हम पढ़ेंगे, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे तेमान, तेरे शूरवीरों का मन कच्चा हो जाएगा और यूं एसाव के पहाड़ पर का हर एक पुरुष घात होकर नष्ट हो जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर एक व्यक्ति का नाम आ रहा है, तेमान, एसाव के पोते के नाम पर था जो एदोम के दक्षिणी भाग में था। तेमानी लोग अपने साहस के लिए जाने जाते थे। तो अब हम देखेंगे एदोम का अपराध। पद 10 से 14 में ओबद्याह परमेश्वर द्वारा एदोम के विनाश के कारण को हमें देगा। घमंड उनका सबसे बड़ा पाप था और घमंड ही के कारण उन्होंने और भी पाप किए। घमंड एक ऐसा स्वभाव है जिसे आप अधिक समय तक छिपा नहीं सकते हैं। यह एक कैंसर के समान है जो फैल जाता है। जीवन का व्यापक तत्व ज्ञान आपकी उंगलियों में आ जाता है और फिर आपके संपूर्ण व्यक्तित्व में समा जाता है। यदि आप परमेश्वर रहित हैं तो आप अपने जीवन से उसे व्यक्त करेंगे, और यदि आप परमेश्वर को मानने वाले हैं, उससे भय में जीवन जीने वाले हैं, तो आपका जीवन ईश्वर भक्ति से पूर्ण होगा। अतः अब ओबद्याह एदोम के घमंड से उत्पन्न पापों की सूची हमें देता है। एसाव और याकूब जुड़वा भाई तो थे, परंतु स्वभाव में वे सर्वथा भिन्न थे। वे एक माँ और एक पिता के संतान थे तथा एक ही परिवार में दोनों पले और बढ़े थे। उन दोनों के मध्य आरंभ ही से संघर्ष था और उनकी कड़वाहट तथा घृणा का कभी अंत नहीं हुआ था। परमेश्वर ने एदोम से संबंध बनाने के विषय अपने लोगों को आदेश दिया था, व्यवस्था विवरण के पुस्तक 23 अध्याय उसके 7 पद में लिखा है, किसी एदोमी से घृणा न करना क्योंकि वह तेरा भाई है। अर्थात अपने रिश्ते को, अपने संबंध को ठीक से रखना क्योंकि वह तेरा भाई है। परंतु उन्होंने इस्राएल पर सदैव विरोध किया। जब नबूकदनेस्सर, जो बाबुल का राजा था, यरूशलेम में नरसंहार कर रहा था, तब वे उसकी सेना को उत्साहित कर रहे थे। भजन संहिता 137 के 7 में लिखा है, हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वे कैसे कहते थे, ढाओ उसको नींव से ढा दो। उन्होंने इस्राएल के संपूर्ण इतिहास में उनसे शत्रुता निभाई थी। उनके ईश्वर रहित घमंडी जीवन के 5 मुख्य काम थे जिसे हम आगे देखते हैं, और उसमें सबसे प्रथम है उपद्रव। जी हां, उपद्रव करना। ओबद्याह की पुस्तक 1 अध्याय के 10 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, हे एसाव, उस उपद्रव के कारण जो तूने अपने भाई याकूब पर किया, तू लज्जा से ढपेगा और सदा के लिए नाश हो जाएगा। जी हां, उनके साथ 2 घटनाएं घटेंगी। पहला, वह लज्जा से ढपेगा। बेबीलोन ने अंततः पेत्रा नगर को जीत ही लिया, जिस पर एदोम का बहुत अधिक भरोसा था, और नागरिकों को बंदी बना लिया गया और वे बहुत समय तक बंधुआई में ही रहे। और दूसरी बात हम देखते हैं, सदा के लिए नाश हो जाएगा। आज हम इसराइल के बारे में तो बहुत कुछ सुनते हैं, परंतु एदोम के बारे में हम आज कुछ भी नहीं सुनते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि वे सदा के लिए नाश हो जाएंगे। मेरे मित्रों, एदोम परमेश्वर से रहित एक जाति थी और वे उग्र लड़ाके थे। हिंसा परमेश्वर की विधि नहीं है। हमने भी देखा है कि हिंसा और युद्ध के द्वारा कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। आज एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करता है, परंतु कुछ भी लाभ नहीं। मनुष्य मारे जाते हैं, संपत्ति नाश किए जाते हैं, परंतु फिर से तनाव बना रहता है। मेरे मित्रों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है कि उनके पास लड़ाके थे और ये लोग उग्र थे और ये हिंसा भी करते थे। आगे लिखा है कि उनका दूसरा दोष था कि उन्होंने इस्राएल के शत्रुओं का साथ दिया। जी हां, जो लोग इस्राएल के विरोध में लड़ने के लिए आते थे, जबकि एदोम का भाई इस्राएल है, फिर भी वह इस्राएल को सहायता न दे करके अपने शत्रुओं की सहायता करता था, वह उनको साथ देता था। ओबद्याह 1 के 11 पद में लिखा हुआ है, जिस दिन परदेशी लोग उसकी धन संपत्ति छीनकर ले गए और पराये लोगों ने उसके फाटकों से घुसकर यरूशलेम पर चिट्ठी डाली, उस दिन तू भी उनमें से एक था। ध्यान दीजिए, लिखा है कि तू भी, अर्थात एदोम भी उस दिन उन शत्रुओं में से और उनके बीच में एक था। अपने रक्त संबंधी भाइयों का साथ देने की अपेक्षा उन्होंने पार्श्विक शत्रुओं का साथ दिया था। आज हम में से कई लोग भी पारिवारिक जीवन में कुछ बातों को लेकर के ऐसा ही करते हैं, विशेष करके धन संपत्ति को लेकर के। ये लालच, ये घमंड जो हमारे जीवन को नाश कर देता है, भाई भाई से अलग कर देता है। यहां पर हम देख रहे हैं कि अपना भाई अपने भाई के साथ नहीं है, परंतु शत्रुओं को साथ दे रहा है। और यही कारण है कि परमेश्वर कहता है कि यह उसका पाप है। उपद्याय 1 उसके 12 पद में लिखा है, परंतु तुझे उचित नहीं था कि तू अपने भाई के दिन में, अर्थात उसकी विपत्ति के दिन में, उसकी ओर देखता रहता और यहूदियों के विनाश के दिन उनके ऊपर आनंद करता और उनके संकट के दिन बड़ा बोल बोलता। उन्होंने यहूदा पर आए संकट का आनंद लिया, वे बहुत खुश थे, जो उनके घमंड का प्रमाण था। यदि आप किसी के कष्टों पर किसी को खुश होते हुए देखते हैं, तो निश्चय जान लीजिए कि वह घमंडी है। परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर घमंड से घृणा करता है। यदि आप किसी दुखियारे को देख करके आप खुश हो रहे हैं, तो समझ लीजिए कि घमंड आपके सिर चढ़ करके बोल रहा है और परमेश्वर आपसे घृणा करता है। वह चाहता है कि आप उस व्यक्ति के प्रति दयावंत बने, उसकी सहायता करें, ना कि उसके ऊपर में आप हंसे। यहां पर हम यही बात देख रहे हैं जो एदोम के जीवन में है। आगे हम देखेंगे चौथी बात है, एदोमियों का चौथा दोष था निर्दयता से किसी को लूटना। जी हां, बिना किसी दया किए हुए किसी को भी वे लूटते थे। उपद्याय 1 के 13 पद में लिखा है, तुझे उचित नहीं था कि मेरी प्रजा की विपत्ति के दिन तू उसके फाटक में घुसता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी दुर्दशा को देखता रहता और उसकी विपत्ति के दिन उसकी धन संपत्ति पर हाथ लगाता। मेरे मित्रों, उन्होंने इसराइल के शत्रुओं का साथ ही नहीं दिया, उन्होंने उनके बंदी बनाकर ले जाए जाने के बाद वहां जाकर लूटपाट की। यह क्या ही दुखद बात है कि अपने भाई बंधुओं को गुलाम बनाकर ले जाते हुए उन्होंने देखा और तत्पश्चात वे उस नगर में घुस करके वहां की धन संपत्ति की लूटपाट भी की। आप समझ सकते हैं कि यह किस प्रकार का नाता रहा है। घमंड से भरा एदोम कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। मेरे मित्रों, घमंड मनुष्य से भयानक कुकर्म करवाता है, जिसमें से एक है चोरी करना। व्यापार में या क्लब में अपने मर्यादा बनाए रखने में अनेक जन गलत तरीके से काम करते हैं और अलग तरीके को काम में लेते हैं। आज हमारे समाज में बेईमानी का बोलबाला है। समस्या क्या है? जी हां, समस्या क्या है? सिर्फ घमंड। एक घमंडी मनुष्य जो परमेश्वर से दूर है, वह ऐसे कुकर्म करता है और करता ही रहता है, क्योंकि उसे परमेश्वर का डर नहीं है। वह परमेश्वर के भय में जीवन नहीं जीता है, वह अपने आप में जीता है, और यही कारण है कि वह घमंड और कुकर्म करता रहता है। मेरे प्रियो, बाइबल आज भी मनोविज्ञान पर एक सर्वोत्तम पुस्तक है। वह मानव विवेक की मूल समस्या तक पहुंचती है। अतः हम आत्म उत्थान के मनोवैज्ञानिक सुझावों का त्याग करके परमेश्वर के वचन का अनुसरण करें। जी हां, उसके वचन पर मनन चिंतन करें। आपने संभवतः मनुष्य के पतन का मूल कारण घमंड उपद्याय की पुस्तक में नहीं देखा है। यह परमेश्वर से रहित जीवन का परिणाम है, जो विनाश की ओर ले जाती है, जो हमें नाश कर देती है। मेरे मित्रों, आज हम इन सारी बातों को सुनने के बाद भी यदि हम घमंड में बने रहते हैं, तो हमारे लिए बहुत दुख की बात है। क्यों ना हम अपने मनों को फिराएं और परमेश्वर की ओर आ जाएं और परमेश्वर से कहें कि प्रभु आप मेरी सहायता कीजिए, मैं घमंड को छोड़ना चाहता हूँ, मैं नम्र व्यक्ति बनना चाहता हूँ, मैं दयावंत व्यक्ति बनना चाहता हूँ, एक साधारण व्यक्ति बनना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जी हाँ, जब आप प्रार्थना करेंगे, उससे मांगेंगे, उसके निकटता में आएंगे तो निश्चय ही वह आपकी सहायता करेंगे। उबद्या एक उसके 14 पद में आगे लिखा है, तुझे उचित नहीं था कि तीर मुहाने पर उसके भागने वालों को मार डालने के लिए खड़ा होता और संकट के दिन उसके बचे हुओं को पकड़ता। मेरे विचार में यह तो अत्यधिक घृणित कार्य था। यह उनके तत्व ज्ञान समर्थम की जीविता का पार्श्विक उदाहरण था। उन्होंने अपने भाइयों के साथ विश्वासघात किया था। जब राजा नबूकदनेस्सर बाबुल से आया तो राजा नबूकदनेस्सर ने यहूदा पर आक्रमण किया, तब अनेक यहूदी पहाड़ों में भागे कि छिप जाएं, अपनी जान को बचाएं, परंतु एदोमी बेबीलोन के सैनिकों को बता देते थे कि वे किस किस गुफा में छिपे हैं और कहां कहां पर हैं। वे बचाने के बजाय वे उन्हें पकड़वा रहे थे, अपने भाइयों को वे मरवा रहे थे। मुझे एक व्यापारी ने बताया कि व्यापार में मनुष्य कुत्ता बन जाता है। वह पैसा कमाना चाहता है, वह सफल होना चाहता है। इन सब के पीछे क्या है? जी हाँ, घमंड। घमंड क्या है? यह परमेश्वर से रहित जीवन बिताने की प्रकृति है। मनुष्य मनुष्य के साथ विश्वासघात करता है, साथियों के साथ विश्वासघात करता है। लोग मन में बैर रखकर मित्रता का स्वांग रचते हैं। समाज को देखना हृदय विदारक है मेरे प्रियो, और यही कारण है कि आज व्यापार जगत में भी बहुत सारी हत्याएं होती है, क्योंकि मित्र स्वांग रचता है मित्रता की और घमंड को कार्य करने देता है और अंततः विनाश को देखते हैं। मैं कहना तो नहीं चाहता, परंतु कलीसिया में भी घमंड है। एक घमंडी युवक संसार में आगे बढ़ने के लिए दूसरों के पापों पर दृष्टि करता है, दूसरों के पांव पर पांव रख करके चलता है। मुझे ऐसे लोग भी मिले हैं जो अपने लाभ के लिए मेरी पीठ में छुरा भोंकने के लिए भी तैयार रहते हैं, जबकि मैंने सदा ही उनकी सहायता की है। लोग धर्म गुरुओं तक के साथ विश्वासघात करने से नहीं चूकते, सिर्फ घमंड के कारण। अब आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर घमंड से क्यों घृणा करता है। घमंड मनुष्य को पशु बना देता है, वरन पशु से भी नीचे गिरा देता है। इस कारण उबद्या की पुस्तक विकासवाद के विरुद्ध विनाशकारी वाद है। मनुष्य घमंड से कहता है, हम पशुओं से विकसित हुए हैं, परंतु परमेश्वर कहता है, तू क्या नहीं जानता कि मैंने तुझे अपने हाथों से रचा है, मैंने तुझे अपने रूप में बनाया और तू इतना अधिक गिर गया कि पशुओं से अधिक पतित हो गया है। परमेश्वर बार बार कहता है कि वह घमंड से घृणा करता है, और उसने मुझसे कभी नहीं कहा कि मैं उसकी ओर से क्षमा मांगू। मेरे मित्रों, एदोम और इसराइल का अंतिम व्यवहार देखना है तो प्रभु यीशु के युग में आ जाएं। वहां एक दीन मनुष्य है जो गलील के प्रवेश में, सामरिया में और यरूशलेम की सड़कों पर घूमता है। वहां एक और याकूब के वंश से है। वहां एक राजा है जिसका नाम हेरोदेश है। वह एसाव वंशी है। किसी ने यीशु से कहा, हेरोदेश तुझे खोजता है। तो यीशु ने कहा, जाकर उस लोमड़ी से कह दो, लोमड़ी से कह दो, मैं आज और कल दुष्ट आत्माएं निकालता हूं और रोगियों को चंगा करता हूं और तीसरे दिन अपना काम पूरा करूंगा। लुकार्ची सुसमाचार 13:32 में हम इसे पाते हैं। परंतु जब उसे बंदी बनाकर हेरोदेश के सामने लाया गया तब उसने मुंह न खोला। यीशु और हेरोदेश आमने सामने थे। याकूब और एसाव का भी अंतिम व्यवहार ऐसा ही है। मेरे मित्रों, याकूब परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति है और एसाव परमेश्वर से दूर रहने वाला व्यक्ति है, और यही कारण है कि इनके बीच में तालमेल नहीं है, क्योंकि शारीरिक मनुष्य आत्मिक मनुष्य का साथ नहीं दे सकता है। आज बहुत सारे लोग इस संसार में अपना जीवन ऐसे ही बिता रहे हैं। वे सिर्फ अपने शरीर के लिए जी रहे हैं, आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि एक दिन वे परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और उनको इसका न्याय देना पड़ेगा। मेरे प्रियो, आज आइए हम अपने जीवन की ओर भी झांक करके देखें कि क्या हम परमेश्वर की निकटता में जीवन जी रहे हैं, क्या हम उसके भय को मानते हैं, या हम घमंड से अपना जीवन जी रहे हैं, क्योंकि घमंड से परमेश्वर घृणा करता है। घमंडी से परमेश्वर घृणा करता है। वह चाहता है कि हम प्रभु यीशु के पद चिन्हों पर चलें, नम्र और दीन हो जाएं। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत ऐसे आशीष दे। मेरे मित्रों, यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। आप इस वचन पर अवश्य ही विचार और विमर्श करेंगे, अपने जीवन की ओर झांक करके देखेंगे। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे भजूं, तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं। यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे भजूं, सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं। शैतान की जो दीवार तूने ही तोड़ दी, यीशु तू महान, हरदम मैं तुझे भजू, तू सर्वशक्तिमान, तेरी मैं प्रशंसा करूं।